आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई राफे एम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये निर्माण इकाई रक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रांति का उदाहरण बनेगी। यहाँ बनने वाले अद्वितीय ड्रोन देश के लिए भविष्य की बड़ी उपलब्धि होंगे। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध के बदलते तरीकों और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपने सामर्थ्य का एहसास कराया है। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी मौजूद रहे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नोएडा में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है।
नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है।
देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अनुमानों का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये आंकड़े शानदार हैं।
हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 trillion की थी, 11वें स्थान पे थे विश्व भर में, हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज 4थे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है GDP विश्व भर में 30वें स्थान पे आएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सीधे प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह वाराणसी के सर्किट हाउस में जनता दर्शन का आयोजन कर आम जन की समस्याएं सुनी। 100 से अधिक लोगों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की सेवा, सुरक्षा व सम्मान ही सरकार का ध्येय है। सबकी समस्या का समाधान कर प्रदेश के हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने गूगल प्ले स्टोर पर नया एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। UPSSSC नाम के इस ऐप से अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। आयोग के अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में 2 पालियों में होगी। इस परीक्षा में 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब नए मोबाइल ऐप के माध्यम से अभ्यर्थी परीक्षा जनपद की सूचना, प्रवेश पत्र, परिणाम और अन्य जरूरी अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर ही आसानी से देख सकेंगे। उधर परिवहन निगम ने UPSSSC की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 11,000 से अधिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। अयोध्या में एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने इस बार राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के 9वें आयोजन के दौरान 26,11,000 दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 28 लाख दीप बिछाने की योजना बनाई गई है। दीपों के सजाने और प्रज्वलित करने के लिए 32,000 स्वयंसेवक लगाए जाएंगे। प्रदेश के कई जिलों में अभी भी नदियां उफान पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उधर जौनपुर जिले में भारी बारिश के कारण जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यालयों में शैक्षिक कार्य स्थगित रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।